हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तब मैं बस 20 साल की थी, जब मेरे कॉलेज खत्म होने के साथ ही मेरे माता पिता ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ प्रेम से करवा दी थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन माता पिता के सामने मेरी एक न चली। लड़की थी तो रिश्तेदारों और समाज का हवाला देकर, जोर जबरदस्ती करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे शादी के मंडप पर बिठा दिया गया। उसी पल से मेरी जिंदगी बदल गई। शादी के बाद विदाई हुई और अपना घर छोड़कर मैं ससुराल चली गई। वहां सबने प्यार भी दिया और इज्जत भी। शादी की पहली रात ही पति मेहरबान हो गया। मैं उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, पर इनकार कहने का अधिकार जब अपने माँ बाप ने नहीं दिया तो उस गैर से क्या उम्मीद रखती। उसने भी तो एक बार भी मेरी मर्जी नहीं पूछी, अपनी मनमानी की और अगले दिन मेरे उठने से पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। जब सबको पता चला तो सभी उंगलियां मेरी तरफ ही उठी कि मुझमें ही कोई कमी होगी। मैं ही अपने पति को खुश नहीं कर सकी, उसे खुद से बांध कर नहीं रख सकी। घर में कदम रखते ही घर का बेटा घर छोड़कर चला गया तो मैं ही मनहूस हूँ जो उस घर की खुशियां निगल गईं। और भी बहुत से ताने सुने थे मैंने, जो आज भी याद करती हूँ तो कानों में चुभने लगते हैं। मेरे भैया बहुत प्यार करते थे मुझसे। उन्हें प्रेम के भागने की बात पता चली तो मेरे ससुराल में सबको खूब सुनाया और मुझे घर वापस ले गए। पर वहां तो और बुरा हाल था। मेरी माँ, भाभी से लेकर रिश्तेदार तक सामने से मुझसे सांत्वना दिखाते, तरस खाते मुझ पर पेट पीछे मुझे ही चार बातें सुनाते। उस वक्त मैं मेंटली अनस्टेबल थी, पर सब सुन और समझ रही थी। पहले ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था मेरे ऊपर, फिर एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सच कहूँ तो नफरत करनी चाहिए थी मुझे तुमसे, पर कर ही नहीं सकी। दिमाग में एक पल को भी ये ख्याल ही नहीं आया कि तुम उस आदमी की औलाद हो। मेरे अंदर पल रहे थे तुम, तो मेरे बच्चे थे। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो ऐसा लगा जैसे मुझे जीने की एक वजह मिल गई हो। पर मेरी माँ और भाभी को मेरी चिंता सताने लगी कि एक छोड़ी हुई औरत जो माँ बनने वाली हो उससे शादी कौन करेगा। उन्होंने मुझे अबॉर्शन करवाने को कहा ताकि मेरी दोबारा शादी करके इस अनचाहे बोझ से छुटकारा पा सके। पर मैं नहीं मानी और मेरे पापा ने ये कहकर मुझे वापस मेरे ससुराल भेज दिया कि जब गलती उनके बेटे ने की तो बदनामी और मेरा बोझ वो क्यों उठाएं। जब बच्चा उनके बेटे का तो जिम्मेदारियां भी वही उठाएंगे। मैं वापस उसी घर चली गई। यहां अपने घर में लोगों के ताने सुने थे, पर वहां किसी ने मुझे दोष नहीं दिया। वहीं आपके पापा से मुलाकात हुई। कुछ दिन बाद प्रेम को पुलिस जब वापस लेकर आई तो उसके साथ उसकी पहली पत्नी भी थी और वो भी माँ बनने वाली थी। मुझसे दूसरी शादी की थी उसने, तो शादी अमान्य घोषित हो गई। उसके बाद आपके लिए मैंने आपके पापा से शादी की ताकि आपको पिता का नाम और प्यार मिल सके और प्रेम दोबारा कभी आकर आपको मुझसे छीनने की कोशिश न करे। उस वक्त मैं आपके पापा से बात तक नहीं करती थी। हम अलग अलग कमरों में रहते थे, पर वो मेरा ध्यान रखने में कहीं कमी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने ही मुझे फिर से जीना और हंसना बोलना सिखाया है। आपके जन्म से पहले और बाद में जितना ध्यान उन्होंने आपका रखा उतना मैं भी नहीं रख सकी, और आपका बाप तो कभी रख ही नहीं सकता था, क्योंकि वो इतना लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं सकता था। वो स्वार्थी था जिसने बस हमेशा अपने बारे में सोचा, और आपके पापा वो इंसान हैं जो हमेशा अपनों को, उनकी खुशियों को खुद से ऊपर रखते हैं। पहले तो हमारी बात भी नहीं होती थी, पर धीरे धीरे हमारे रिश्ते में प्यार ने अपनी जगह बना ली। प्रियांश और आयुषी हमारी जिंदगी में आए जिससे हमारा परिवार पूरा हो गया। उस वक्त भी वो एक बेहतर पिता साबित हुए। उन्होंने पूरी कोशिश की अपने तीनों बच्चों को बराबर प्यार और वक्त देने की। पता है, शादी के बाद से उन्होंने आपको हमेशा अपना बच्चा कहकर संबोधित किया था और ध्यान भी ऐसे ही रखते थे। शुरू शुरू में मुझे संदेह था कि वो आपको सच में सगे पिता जैसा प्यार दे भी सकेंगे या नहीं, पर जैसे जैसे वक्त बीता मैंने उन्हें जाना, समझा, तुम्हारे और मेरे प्रति उनका प्यार लगाव देखा, ये इनसिक्योरिटी मेरे मन से मिट गई। इनसे शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने मायके गई तो माँ और भाभी ने बहुत कहा कि अपनी औलाद अपनी ही होती है, भेद खुद बखुद हो जाता है। तब मुझे इन पर पूरा विश्वास था, फिर भी इनका टेस्ट लिया और कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ ताकि उनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। तब उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो आज तक याद है मुझे। कहते हुए प्रीति मुस्कुराई, अर्श ने देखा अपनी आंखों से उसके चेहरे पर से गम के बादलों को हटकर मुस्कान को सजते और बेसब्री से इंतजार करने लगा वो जवाब सुनने का जो आयुष्मान ने प्रीति को दिया था। प्रीति एक पल को ठहरी, फिर उसने मुस्कुराकर आगे कहा। उन्होंने मुझसे साफ साफ शब्दों में कहा कि तुम सिर्फ मेरे नहीं उनके भी बेटे हो, इसलिए तुमसे जुड़ा कोई भी फैसला अकेले लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि जितनी मोहब्बत वो मुझसे करते हैं उतनी ही तुमसे भी करते हैं, और अगर मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया या मेरे वजह से उनका बच्चा उनसे दूर हुआ तो वो मुझे भी खुद से दूर कर देंगे। हमारा रिश्ता सिर्फ तब तक है जब तक तुम सुरक्षित और हमारे पास हो। उन्होंने कहा कि अगर मुझे शक है उन पर तो वो कभी हमारे रिश्ते को आगे ही नहीं बढ़ाएंगे। तुम हमारे इकलौते बच्चे रहोगे और उनका सारा प्यार सिर्फ तुम्हें मिलेगा, पर अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर सब खत्म। ना वो मुझे अपनी जिंदगी में रखेंगे, ना हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, ना किसी बच्चे का जन्म होगा और ना ही वो दोबारा कभी मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। आयुष्मान का दिया जवाब सुनकर अर्श शॉक्ड सा प्रीति को देखता ही रह गया। वहीं प्रीति ने मुस्कुराकर आगे कहना जारी किया, आयुष्मान जी ने न सिर्फ तुम्हें और मुझे ये जिंदगी दी है, बल्कि आज हम जो हैं सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से हैं। उन्होंने कभी किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि तुम उनकी अपनी औलाद नहीं। तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपने घर से सभी रिश्ते तोड़ दिए, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़ दी ताकि तुम पर कभी आंच ना आए। आज जो खुशियां हैं सब उनसे ही हैं। उन्होंने हमें बेहतर भविष्य देने के लिए कितना संघर्ष किया है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। बहुत अच्छे हैं वो और शायद ही ऐसा कोई दूसरा इंसान इस दुनिया में हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे पति के रूप में ये मिले। उनके प्यार पर शक करना मतलब भगवान पर शक करना होगा। ये गलती मैंने एक बार की थी, आप वही गलती मत दोहराना। अब मैंने आपको मेरे अतीत के बारे में लगभग सभी बातें बता दी हैं, अब आप खुद विचार कीजिए कि वो आपके पापा कहलाने के काबिल हैं या नहीं। प्रीति पूरी बात बताने के बाद चुप हो गई और अर्श के जवाब का इंतजार करने लगी। शायद वो जानती थी कि उसका बेटा क्या फैसला लेगा, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रही थी। अर्श को एक पल सोचने तक का वक्त नहीं लगा। उसने प्रीति के चुप होते ही गंभीरता से कहा, उनसे बेहतर बेटा कोई हो ही नहीं सकता मम्मा। जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है, जितना ख्याल उन्होंने मेरा रखा है, जितनी परवाह वो मेरी करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। आई विश कि आगे चलकर मैं भी उनके जैसा बेटा, पति और पिता बन सकूं और मेरे सर पर मेरे पापा का हाथ मेरी आखिरी सांस तक बना रहे। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, पर आज मैंने उनका दिल दुखा दिया। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं उनसे माफी मांग लूंगा। इसके बाद वो एक पल ठहरा और उलझन भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, मम्मा पापा माफ कर देंगे ना मुझे? बिल्कुल, वो तो तुमसे नाराज ही नहीं, उनकी सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि वो जल्दी से नाराज नहीं होते, सबका पक्ष समझते हैं।
उन्हें पता है कि आपने जानबूझकर वो सब नहीं कहा था। उस वक्त आप परेशान थे इसलिए वो बात कह गए, इसलिए वो आपसे नाराज नहीं। फिर भी आपने गलती की है तो उनसे माफी मांग लीजिएगा। प्रीति ने मुस्कुराकर बड़े ही प्यार से उसे समझाया। अर्श ने हामी भर दी, फिर सोचते हुए बोला, मम्मा जब आपने पापा से शादी कर ली थी और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया था तो अडॉप्शन के पेपर्स क्यों बनाए? क्योंकि जब आप 3 साल के थे तब आपके रियल फादर के बेटे की डेथ हो गई थी और उस वक्त वो आपको हमसे छीनने की कोशिश करने लगे थे। उस वक्त उसने आपको किडनैप भी कर लिया था। तब आपके पापा ही आपको वापस लेकर आए थे। उस दौरान ही हमने अडॉप्शन के पेपर्स बनवाए थे, क्योंकि तब तो मैं थी पर भविष्य का कोई भरोसा नहीं था। अगर आगे चलकर मुझे कुछ हो जाता और तब आपके रियल पापा आप पर अपना अधिकार जताते तो आप आयुष्मान जी से दूर हो जाते, जो मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने कानूनन उन्हें आपका पिता बनाकर आपकी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी और उन पेपर्स में साफ साफ लिखा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो आप आयुष्मान जी के साथ ही रहेंगे, आपके सगे बाप का आप पर कोई अधिकार नहीं होगा।